ओम शांति। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय भ्राता जी बाबा राम भाई जी उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आपका परिचय तो आप लोगों ने सुना थोड़ा बहुत क्लास में भी, शीलू बहन ने बताया ना। आप बाबा के समय से ही आपने ज्ञान लिया है, जब साकार में बाबा थे तभी ज्ञान लिया है, लेकिन तब यहाँ आए नहीं थे, लेकिन ज्ञान तब से ही लिया है। और बहुत पुराने मधुबन के भाई हैं, सुखधाम की जो बिल्डिंग है आप उसको संभालते हैं, देश विदेश के भाई बहने वहां रहते हैं, उनको बहुत अच्छी ईश्वरीय पालना देकर भरपूर करते हैं। और अपने अनुभव से यहाँ पर भी रात्रि क्लास में भी सबको लाभान्वित करते हैं, बाबा के ज्ञान को कैसे जीवन में हम उतारे। कल हमने देखा था कि ब्राह्मण जीवन खुशियों भरा जीवन होना चाहिए, और आज हम देखेंगे ब्राह्मण जीवन में निश्चिंतता भी होना जरूरी है ना? क्यों? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, है ना? बाबा ने ज्ञान दे दिया ना कि अनहोनी तो कुछ भी नहीं हो रही है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर बाबा हमारे साथ है, लेकिन फिर भी कभी कभी चिंता आ जाती है, तो थोड़ी बहुत भी जो चिंता आती है ना, उन सब से भी कैसे मुक्त हो, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में भ्राता जी हैं। ब्राह्मण जीवन निश्चिंत जीवन, इस पर हमें बताएंगे। और आप वैसे पंजाब से हैं, और पंजाब में एक त्योहार होता है लोहड़ी, सुना है आपने? लोहड़ी एक त्योहार होता है, नहीं सुना है? संक्रांति के आसपास होता है, एक दिन पहले। मकर संक्रांति होती है, पता है वो? उसके एक दिन पहले ना,
जनवरी
में ही होता है वो। 14 मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है, और ये 13 जनवरी को होता है। तो आपकी विशेषता है लोहड़ी का जो फेस्टिवल होता है वो मधुबन के मंच पे भी आप करके दिखाते हैं कि उस दिन क्या करते हैं। तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इन बहनों को भी बताना उसमें क्या करते हैं। हाँ, कुछ कुछ बोलते जाते हैं और ऑडियंस हो करते जाते हैं, तो आपको समझाएंगे वो बात भी, थोड़ा सा इनको रमणीकता भी देना। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय भ्राता जी से कि आप सबके सम्मुख ब्राह्मण जीवन निश्चिंत जीवन कैसे रखें हम, उस पर प्रकाश डालें। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। आप सब हिंदी तो जानते हैं, समझते हैं सब, सब समझते हैं ना जी? चलो अच्छा, मधुबन में आते हो, मधुबन की धरनी पर अपना पांव रखते हो, और यहाँ आते हो तो अपनी आत्मा की बैटरी भरपूर करके जाते हो। इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि आप इतनी दूर से आते हो, बर्मा से आए हो ना, बर्मा? हाँ, तो देखो आप कितनी दूर से आए हो मधुबन में, बाबा की भूमि पर अपनी शक्तियां को भरपूर करने के लिए। तो यहाँ हम आते हैं बाबा के घर में, तो यहाँ हमें बहुत बहुत अपना भाग्य इतना उज्ज्वल हुआ है हमारा मधुबन में, कि हम अपनी जीवन अगर हम पहले की देखें तो पहले जीवन हमारी कैसी थी? पहले हमारा जीवन, बोल चाल, रहन सहन, सोच संपर्क संबंध हमारे कैसे थे? मधुबन आने के बाद जब हम बेहद के परिवार में आते हैं, शामिल होते हैं, और यहाँ पर हम बन बन की काठी यहाँ पर आती है, कोई किस प्रांत का होता है, कोई किस प्रांत का होता है, तो हर एक के बोल चाल, भाव स्वभाव, संस्कार सब अलग अलग होते हैं। हमें क्या यहाँ से टारगेट लेके जाना है मधुबन से, कि सबसे बड़ी बात है कि हमें एक बाबा को फॉलो करना है। 4 दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था, और कल भी बाबा ने वरदान में कहा था कि बच्चे भाई बहन को फॉलो नहीं करना है, आत्मा को फॉलो नहीं करना है, फॉलो किसको करना है? बाप को फॉलो करना है। किस लिए? क्योंकि बाप एक रस है, एक रस है। ब्राह्मण फिर भी अप डाउन होते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती स्थिति। लेकिन हमें फॉलो एक को करना है, सर्वशक्तिमान शिव बाबा को, और उनको फॉलो करने से हमको पूर्ण रूप से गाइडेंस मिलती रहेगी। तो इसलिए अनेक प्रकार की बातें जीवन में आती हैं और सब आती हैं, लेकिन जैसे वो बहन जी ने कहा ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो यानी कि कोई भी सीन सामने आता है और वो सीन आता है तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है, ना कि रुकावट डालने के लिए सीन नहीं आता है। रील खुलती जाती है और फिर लिपटती जा रही है, और जैसे जैसे ये रील खुलती जाती है तो हमें नए नए सीन दिखाई पड़ते हैं, और हमें कई बार तो ऐसा भी लगता है कि जो कमजोर आत्माएं होती है ना, और वो तो घबरा भी जाती है कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ। तो ये चीज जो आती है ना, ये वास्तव में हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। तो अभी हमको घबराना नहीं है, निश्चिंत रहना है। इस ब्राह्मण जीवन में हमें हर प्रकार से एकदम लाइट रहना है, हल्का रहना है, क्योंकि शरीर जो है पांच तत्व का पुतला है, आत्मा जो है वो एकदम दिव्यता भरी हुई होती है। आत्मा के अंदर परमात्मा सर्वशक्तिवान, वो दिव्यता और रमणीकता और उसमें भरपूरता, सर्व गुणों का सागर परमात्मा, और फिर परम धाम, जो कि वो भी हमारी बुद्धि भी जब वहां जाती है परम धाम में, तो हम क्या अनुभव करते हैं, दिव्यता अलौकिकता का अनुभव करते हैं। कि मधुबन में रह करके हो या आप अपने घर घर में बैठे हुए हो या ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तीन चीजों का चिंतन करना अति जरूरी है। पहले आत्मा का चिंतन, फिर परमात्मा का चिंतन, फिर परम धाम का चिंतन। तो ये जो चिंतन हम करते हैं तो हमारे चिंतन में धारा जो होती है वो चेंज होती जाती है, माना प्रक्रिया वो बदलती रहती है। एक संकल्प आता है, दूसरा चले जाता है, जब दूसरा चले जाता है और आ जाता है। तो अनेक संकल्प आते हैं, अनेक चले जाते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने की विधि बाबा ने हमें बता दी है। कि कंट्रोल करने की विधि क्या बताई बाबा ने, कि जितना आप सम्मान में रहेंगे उतना ही आप बिल्कुल यानी हल्के रहेंगे और वो आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबा के घर में हम सब बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर अनेक आत्माएं बाबा के घर में आती हैं। अनेक आत्माओं के जब हम संपर्क में आते हैं, नजदीक आते हैं, तो अलग अलग वाइब्रेशन हमें अनुभव होता है। किसी आत्मा का पावरफुल वाइब्रेशन आता है, किसी आत्मा का एकदम प्यार का आता है, किसी आत्मा का एकदम साधारण भी आता है वाइब्रेशन। तो अलग अलग आत्माओं के वाइब्रेशन हम कैच करते हैं। तो मधुबन में देखना सबको एक समान दृष्टि से, किसी आत्मा को अपने मन में किसी भी प्रकार का हम यानी हलचल नहीं ला सकते कि किसी में ये कमी है, फलाने में ये कमी है। अगर ये कमियों को देखेंगे तो फिर हमारा वहीं से वहीं ब्रेक लग जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, कि आगे बढ़ने के लिए हमें केवल एक बाबा को ही देखना है। देखिए समाज में कोई भी समस्या आती है, समस्या आती है और चले भी जाती है। समस्या को अगर भगाने की कोशिश करेंगे तो समस्या भागेगी नहीं। समस्या की बजाय हम क्या करना है, अपने को परिवर्तन करना है। अगर समस्या, देखिए एक भाई आया हमारे पास, उसने कहा मेरे को बहुत बहुत समस्या आती रहती है के पीछे। मैंने कहा देखिए आप योग करिए, आप अगर योग आप करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव समस्या पर पड़ेगा। तो योग आप क्या करो कि सारा दिन में कम से कम तीन बार तो आप बैठो, 15-15, 20-20 मिनट आप ऐसे वाइब्रेशन घर में बैठे भी आप वाइब्रेशन फैलाओ, और जिससे कि आपको एक पहला है कि एक आपको पवित्रता की वाइब्रेशन 20 मिनट आपको पूरी फैलानी है घर में, 20 मिनट वाइब्रेशन फैलाओ। फिर उसके बाद फिर आप कुछ देर के बाद, 2 या 3 घंटे के बाद, फिर आप दूसरी वाइब्रेशन, मैं शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिमान बाबा का बच्चा हूँ, सर्व शक्तियों का जो बाबा से हमने स्टॉक जमा किया अपने पास, वो शक्तियों का वाइब्रेशन पूरे चारों ओर फैलाओ। और तीसरा है पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाओ। तो ऐसे तीन प्रकार की तीनों तीनों वाइब्रेशन आप अलग अलग फैलाओ तो ये समस्या ऑटोमेटिकली समाप्त होती जाएगी। तो ये सही उसने किया, जब किया तो फिर बाद में सुनाया तो सचमुच ही कहता ये तो समस्या ही भागी, समस्या ही भागी। मैं समस्या ऐसे नहीं भागती है, ये परिवर्तन कोई समस्या का नहीं होता है, परिवर्तन स्वयं का होता है। अगर स्वयं में परिवर्तन आ गया समस्या अपने आप भागी, ठीक है ना। तो समस्या को भगाने की कोशिश नहीं हम करेंगे, हम अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। जितना अपने अंदर सम्मान भरपूरता से एकदम सम्मान अलग अलग बाबा ने हमें दिए हैं, वो सम्मान अलग अलग अपने अंदर अनुभव करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका निजी संस्कार ऐसा हो जाएगा कि प्यार, वो मोहब्बत बाबा के प्रति, प्यार मोहब्बत स्नेह जितना भी वो धैर्यता की शक्ति है, फिर अपने अंदर जो क्या कहते हैं आनंद है, ये सातों शक्ति सातों जो गुण है ना बाबा के, यानी कि बच्चों के अंदर जो सातों गुण होते हैं, पहला गुण है पवित्रता, दूसरा गुण है ज्ञान, तीसरा गुण है शक्ति, फिर और सुख, और फिर प्रेम, और फिर है याद आनंद है, आनंद है। तो सातवां क्या है, सातवां है हमारा बिल्कुल जो कि हम वो सुख, सुख सुख शांति प्रेम गुण आनंद प्रेम और ज्ञान और पवित्रता, सातों गुणों से आत्मा भरपूर होती है। ये सातों गुणों को भरपूर करने के लिए तो हम अपना प्रचार कर रहे हैं ना। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि मधुबन में जब आते हैं तो हमें झोली भरनी है, किसी न किसी आत्माओं से हमें कुछ न कुछ लेते जाना है। हम जब किसी न किसी प्रसाद के रूप में आप लेते जाओ और आप भरपूरता का अनुभव करते जाएंगे। मधुबन में देखो, हम 71 में जब पहले आए थे मधुबन में, और हमने देखा कि मधुबन पूरा ये सारा कच्चा था, फर्श सारा कच्चा था उस समय बहुत, यानी कि ये जो जहां हम मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं ये भी यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ कपड़े हम सुखाया करते थे, यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं पहाड़ी थी, यहाँ अंगूरों की वेले थी और यहाँ पर हम कपड़े भी सुखाते थे। और यहाँ पर जब बाबा के वहाँ बाबा एक बार मधुबन में आए, अपना बाबा अपने कमरे में आए और वहाँ हम जब मिले बाबा के कमरे में पहली बार मिले 71 में, तो जो मेरा संकल्प था बाबा ने कैच कर लिया। मेरा संकल्प था कि मैं मधुबन में रहूं और मधुबन में ही सेवा करूं। तो बाबा से जैसे मैं मिल रहा था, दृष्टि ले रहा था बाबा से, तो बाबा ने कहा बच्चे आपका जो संकल्प है ना वो पूर्ण हो जाएगा एक दिन। तो फिर मैं दूसरी बार नेक्स्ट बार आया, फिर 73 में आया, उसके बाद मैं गया ही नहीं, वापस ही नहीं गया, सीधा ही मधुबन में। बस बाबा ने जो सेवा दिया वो सेवा हम आज कर रहे हैं। पहली सेवा हमें एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में राजयोग भवन, पहली बिल्डिंग यहाँ बनी थी और वो हमने लिया सेवा के लिए। सेवा हमें बाबा ने जो दिया, दीदी ने दिया, वो सेवा हमने शुरू किया। उससे पहले हम भंडारे में सेवा करते थे और फिर हमने संकल्प कर लिया था कि अपने जीवन में दो बातों पर हमने विशेष ध्यान देना है, किसी का अवगुण अपने चित्त पर नहीं धरना मेरे को, ठीक है। एक तो किसी का अवगुण अपने चित्त पर नहीं धरना है और दूसरा किसी के संग में नहीं आना, दोष संग दोष में नहीं आना, ठीक है। इस पर मैं शुरू से लेकर अटेंशन विशेष देता हूं। और मधुबन बड़ा संगठन है, जहां बड़ा संगठन होता है वहां पर दिल भी बड़ी रखनी होती है। जितनी दिल बड़ी रखेंगे उतना आप बड़े संगठन में सबकी दिलों को आप जीत सकेंगे। जितना आप सभी के दिलों को जीतेंगे तो आप सबके नजदीक आते जाएंगे, आपका ये जो दैवी कुल के संस्कार है ना वो इमर्ज होते जाएंगे। जैसे जैसे आपके दैवी कुल के संस्कार इमर्ज होते जाएंगे और आपको अपनेपन की फीलिंग आती जाएगी। ये परिवार अपना है, ये अपना है, और फिर आपके अंदर दातापन की भावना पैदा होती जाएगी। अपने अंदर बहुत बहुत आपके अंदर फिराक दिल, उदार चित्त, ये सब गुण धीरे धीरे आपके अंदर आते जाएंगे। तो जब हमने मधुबन में जब हम ये डिपार्टमेंट जब संभाला और 11 साल हम वहां रहे, उसके बाद फिर हमने अपना सुखधाम जब नया नया बन रहा था, तो उस समय भी हमने एक बार संकल्प किया था। ये सुखधाम तो पहले चक्री हाउस था, पुराना था, जो कि 4 कमरे 5 कमरों का एक बिल्डिंग थी। और उस समय हमने संकल्प किया कि बाबा, हमको जब ये जो बिल्डिंग बनी ना, तो ये मुझे सेवा आप देना। तो ये जब हमने वो संकल्प किया, तो बड़ी दादी जी शांति स्तंभ पर खड़े थे, तो शांति स्तंभ पर खड़े थे, तो हमने कहा कि दादी, एक बात आपसे करनी है। यहाँ बोलो दादी जी को। मैंने कहा, दादी जब ये नया नया सुखधाम बनेगा ना, तो ये आप मुझे ये सेवा देना। तो दादी ने क्या जवाब दिया मालूम? दादी ने कहा कि यही मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा, ये सुखधाम नया नया अभी जो बनेगा, ये सुखधाम मैं किसको सेवा दूं? ये बाबा को दादी सुना रही थी। तो मैं इतने में बाबा ने मुझे दादी के पास दे दिया। मैं दादी के पास गया, तो दादी ने कहा, गुड ऑफर आपने किया है, ये सुखधाम आपको मिलेगा। और फिर ये ऐसा हमने इनके कहा कि आप मुन्नी बहन को बोल दो, और फिर वो अपने आप फिर सारा इंतजाम करेगी। उसके बाद हमने जब संकल्प करने के बाद जब सुखधाम संभाला, संभालने के बाद ऐसे ऐसे नए नए अनुभव हुए, जो मैं कहता हूँ कि वंडर है अनुभव। यानी ऐसे ऐसे लोग पत्रकार भी हमारे पास आते थे हमारी परीक्षा लेने के लिए। एक पत्रकार आया हमारे पास, वो कैसा था, दिल्ली से आया था। मैं पहले भी एक क्लास में सुना चुका हूँ, फिर दोबारा सुना देता हूँ, आप नहीं हो। तो जब वहां पर पत्रकार एक आया, तो दिल्ली से आया था, अच्छा था, और 3 दिन रहना था उसको। 2 दिन रहा हमारे पास वहां, और तीसरे दिन अटैची पकड़ा और चलने लगा। तो मैंने कहा, भाई साहब आप अभी जा रहे हो? कहते हाँ हम जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप तो 3 दिन रहना था, आपने 2 दिन रहे अभी। कहता हाँ मैंने बरोबर कहा था, लेकिन अभी 1 दिन मैं रहूंगा होटल में। मैंने कहा क्यों? तो कहते इसलिए होटल में रहूंगा, क्योंकि जब घर जब किसी के पास मेहमान आता है ना, तो वो अटेंशन से उसकी सेवा करता है कि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। तो हमने ध्यान से अपने सबने मिलकर के हमारी सेवा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसे और अच्छा जानने के लिए मैं होटल में इसलिए रह रहा हूँ कि उनसे मैं आप लोगों का रिस्पांस सुनना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारियों के लिए आपका क्या विचार है। मैंने कहा हाँ भले आप जाके रहिए रात। फिर रात रहे वो, जिन जिन से भी उन्होंने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा कुमारियों के प्रति आपका क्या विचार है, इनकी कैसी एक्टिविटी चलती है, तो सारा उन्होंने जिनसे भी उन्होंने प्रश्न पूछा, उन्होंने बहुत गुड आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। कहा कि देखो, जब से ब्रह्मा कुमारियां आई है माउंट आबू में, तब से लेकर आज माउंट आबू में रौनक रहती है, नहीं तो यहाँ सुनसान रहता था माउंट आबू में। ब्रह्मा कुमारी जब से आई है, यहाँ हॉस्पिटल भी जब से खोला है, यहाँ बहुत सुख है इनके द्वारा, बड़ी अच्छी शांति की वाइब्रेशन फैलाती है, पवित्र रहती है, इनकी सारी दिन की दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है, और काफी सेवा करती हैं, और यही एक दिन धरती पर स्वर्ग लाकर ही रहेगी। ये ऐसे से कईयों ने रिस्पॉन्स दिए, तो बड़ा खुश हुआ वो पत्रकार। जब दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने के बाद उसने फिर पेपर में ये डाला कि देखो, माउंट आबू में मैं हेडक्वार्टर में गया, और वहां बहुत मैंने परीक्षा भी लिया, और वहां पर मैंने टटोला भी, कई किस ख्याल से आते हैं, कोई किस ख्याल से आते हैं, और हर का विचारधारा अपनी अपनी होती है। तो कोई सीखने के ख्याल से आते हैं, कोई टटोलने के ख्याल से आते हैं। तो देखिए, बाबा ने कहा हुआ कि बच्चे 24 घंटे शिव बाबा का पैरा यज्ञ में रहता है, भले सेंटर हो या यज्ञ हो, तो बाबा का यज्ञ है, बाबा ही जिम्मेवार है। इसलिए हम बच्चे तो निमित्त मात्र हैं, इसलिए बाबा ने जगह रचा है, बाबा की जिम्मेवारी है। कोई कैसा व्यक्ति आता है, कोई कैसा व्यक्ति आता है, सब अपने अपने विचार लेके आते हैं और फिर अपना अनुभव करके जाते हैं बाबा के घर से। तो इसलिए एक और पत्रकार हमारे पास आया और उसने कहा कि देखो माउंट आबू ही है एक सेफ। तो मैंने कहा आपने यहाँ कैसा लगा आपको माउंट आबू आए हो आप? एक नाइट दो दिन रहा वैसे वो, तो दो दिन रहने के बाद फिर जब चलने लगा तो चलते समय मैंने ऐसे प्रश्न पूछ लिया आपको माउंट आबू कैसा लगा, मैंने ये पांडव उन कैसा लगा? तो कहता बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो उसने जाते समय एक शब्द बोला, कहता माउंट आबू एक सेफ जगह है, और भी शहरों में रिपोर्टें आती रहती हैं महिलाओं पर कन्याओं पर बहुत हमले हो रहे हैं, और माउंट आबू एक प्यूरिटी की वाइब्रेशन, तपस्या की वाइब्रेशन, वो आपके द्वारा ही पूरे माउंट आबू में आने से पूरा माउंट आबू सेफ रहता है। इसलिए हम खुश हैं और आप लोग का जो एक्टिविटी सारा दिन चलती है सेवा की, सेवा भाव बहुत अच्छा है, और यहाँ बिल्कुल माउंट आबू में कोई हलचल हमने कभी आज तक सुनी नहीं है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स उसने मतलब लिया, बहुत अच्छा प्रभावित होके गया। ऐसे कई कई ऐसे भी आते हैं बहुत अच्छे खुश होके जाते हैं। श्री अपना कृष्ण आयर जब यहाँ आया था सुप्रीम कोर्ट का, कृष्ण आयर जब सुप्रीम कोर्ट का जब आया था यहाँ, तो उनको कहीं बहुत उसकी जुगल ने कहीं शरीर छोड़ दिया था, तो उसको बार बार उसको अपनी जुगल की याद आती थी सपने में, सपने में आती थी, सारा दिन उसको याद ही आती रहती थी उसकी, बहुत नींद नहीं कर पाता था। सुप्रीम कोर्ट का जज, वो जब अचानक उसको एक सपने में आया कि वो आशा बहन है ना दिलीप पांडव उनकी, वो सपने में आई उसको, और वो जब सपने में आई तो वो उसने कहा कि अगर आपको सच्चे मन की शांति चाहिए तो आप माउंट आबू में जाओ, आपको वहां शांति मिलेगी। तो वो कुछ अपने प्रोग्राम अटेंड किए हुए थे उसने पहले से ही, जब आए वो आश्रम पर तो पहले देखा तो आशा बहनी सामने आई, देखी तो कहा बहन जी आप ही थे जबकि आपने मैसेज मुझे सपने में दिया था कि सच्चे मन की शांति चाहिए तो माउंट आबू में जाओ, तो मैं आया हूँ आपके पास, अभी मुझे क्या गाइड करना है मुझे आप करिए। तो उसने कहा कि अपना अनुभव सुनाया कि मेरे को रात नींद नहीं आती है, ऐसे ऐसे मेरी जुगल ने शरीर छोड़ा हुआ, तब से मैं मतलब बहुत टेंशन में रहता हूँ। तो उसके बाद फिर आशा बहन ने फिर यहाँ भेजा माउंट आबू में, यहाँ राजयोग भवन में जब उसको हम भोजन कराते थे, थोड़े लोग आते थे योग शिविर वाले उस दिनों में, तो थोड़े लोग आते थे, तो हमने तीन दिन उसको भोजन कराया। मैंने कहा भाई साहब आपको कैसा लगा यहाँ? कहता यहाँ बहुत बहुत मैं यहाँ की महिमा किन शब्दों से गाऊं, इतना अच्छा लगा यहाँ माउंट आबू आने। सुप्रीम कोर्ट का जज किचन आए, तो उसने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया और उस समय खुश होके गया, तीन दिन यहाँ खुश होके गया। उसके बाद फिर वो अनेकों की सेवा में अच्छे अच्छे लेक्चर करते हैं वो, और बहुत अच्छी सेवा करते रहे वो। और फिर मैं कहता हूँ कि मधुबन तो इतना ऊंचा स्थान है, माउंट आबू जैसा पूरे विश्व में कहीं वाइब्रेशन इतनी ऊंची कहीं नहीं मिलेगी आपको जितना ऊंचा ये स्थान है। हम भले यहाँ साधारण रूप से यहाँ बैठते हैं बातचीत करते हैं, लेकिन नहीं बहुत बहुत ऊंची धरनी है यहाँ, तो बड़े बड़े ऊंचे ज्योतिषी भी आते हैं यहाँ आकर के, वो भी बड़े प्रभावित होके जाते हैं, और कई ऐसे भी बोल के जाते हैं ज्योतिषी, कहते हैं शांति स्तंभ से लेकर, शांति स्तंभ से लेकर के ये जो अपना माना ये जो बाबा की झोंपड़ी है ना, यहाँ से सीधी रोड है ना, ये इतनी इतनी पावरफुल वाइब्रेशन यहाँ से आती है कि सचमुच अगर यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति घर आ जावे ना, लंगड़ा लूला काना बहरा सब एकदम सीधे हो जाए यहाँ पर आके। तो उनका भावार्थ क्या था? उनका भावार्थ यह था कि नेगेटिविटी वाले जो होंगे ना, वो यहाँ आने के बाद उसको पॉजिटिव थिंकिंग ही लेके जाएंगे यहाँ से, गलत भाव नहीं लेके जाएंगे, अच्छा भाव लेके यहाँ से जाएंगे। तो ये उसने शब्द बोले थे। तो बाबा के घर में बहुत ऊंचे ऊंचे लोग भी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं और बहुत प्रभावित होकर जाते हैं। हमने देखा कि मधुबन में एक बार दादी जा रही थी कहीं इंडिया में, कहीं टूर पर गई थी, और उस समय चंद्रमणि दादी, मैं इसलिए अनुभव सुना रहा हूँ कि मेरे को शीलू बहन ने कहा कि आप थोड़ा ज्यादा अनुभव ही सुनाएंगे तो जरा अच्छा रहेगा, आप ठीक है, अच्छा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अनुभव की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ कि आप लोग के लिए कहा मेरे को शीलू बहन के अनुभव ज्यादा सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस समय क्या था, दादी गई थी कहीं विदेश में, ना इंडिया में, यही टूर पर गई थी, 84 की बात आई है। तो चंद्रमन दादी यहाँ थी और जानकी दादी यहाँ थी, और बम्बे से एक दादी आई थी जो के जो शील दादी थी, बड़ी दीदी की लौकिक बहन थी, वो ध्यान में जाती थी और ओम शांति भवन में जब भोग का दिन जब वो गई बाबा के पास, तो बाबा ने ऊपर से संदेश क्या दिया, बाबा ने कहा कि चंद्रमणि दादी और अपना जानकी दादी दोनों को कहो कि पूरे डिपार्टमेंट में, मधुबन के डिपार्टमेंट में सभी चक्कर लगाएं, वहां सभी चक्कर लगाएं ताकि सभी, कोई डिपार्टमेंट छूटे नहीं। बाबा ने ऊपर वतन से संदेश दिया और खास उस डिपार्टमेंट में जाना जहां वेल्डिंग डिपार्टमेंट है। तो 84 की बात है, जबकि वो उस समय दादा देवसरन था, तो देवसरन था तो उस समय वहां तेल के ड्रम थे, तो तेल के ड्रम में से एक तेल का ड्रम लीक कर रहा था। तो बाबा ने वतन से देखा कि तेल का ड्रम लीक कर रहा है, तो वो आप संदेशी को बाबा ने संदेश दिया कि बच्ची जाकर के दोनों दादियों को बोलो कि वहां डीजल डिपार्टमेंट है, वहां जाकर के आप चक्कर लगाएं और वहां तेल लीक कर रहा ड्रम। तो सचमुच जब दोनों दादियां गई वहां पर तेल लीक कर रहा था, तो वो डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज था वो कहीं वहां डिपार्टमेंट में नहीं था, वो कहीं इधर उधर था कहीं, तो वो वहां जब गया तो वो सारा संभाला तेल सबको बुला करके। और देखिए बाबा ने कहा हुआ है ना, जैसे मैंने पहले कहा ना कि बाबा ने कहता है कि बच्चे 24 घंटे यज्ञ में बाबा का, शिव बाबा का पैरा रहता है, तो बाबा वतन में बाबा ने ऊपर से बताया कि कहां क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि यानी यज्ञ के अंदर बाबा कभी नुकसान नहीं यज्ञ का होने देता, अगर नुकसान होने भी लगे तो बाबा बचा लेता है, किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना करके भेज देता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बाबा ने ये भी बाबा ने बताया है कि बच्चे कोई भी ऊपर नीचे बात हो जाती है, होती है, अगर मान लीजिए आपकी एकाग्रता शक्ति कम है, आपके अंदर व्यर्थ की ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर की आत्माओं का प्रभाव अपने पर पड़ता है। जब बाहर की आत्माओं का प्रभाव अपने पर पड़ता है तो वो उस पर पड़ेगा जो कमजोर आत्मा होती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक पोरबंदर से एक युगल आया था और उनका नाम था प्रताप, डॉक्टर प्रताप था। उनकी युगल को क्या हुआ कि वो अचानक ही उसको घर में वहां बैठे बैठे ये जो बाजू है ना यहाँ उसको दाने दाने हो गए। तो वो किसी ने कुछ तंत्र यंत्र मंत्र तंत्र से उसको प्रभावित कर दिया था उसको, तो वो सारे उसको बाजू सारा खराब हो गया। तो यहाँ सुखराम ठहरी थी, उसने मुझे सुनाया कि ऐसे से मेरे साथ हो गया। तो वो फिर दादी के पास गई, फिर बड़ी दादी को उसने अपना अनुभव सुनाया कि दादी ऐसे से मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो मैं क्या करूं। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, आप 5 दिन यहाँ पर बाबा के कमरे में आप योग करो, आप तपस्या करो, ठीक है, सुबह को अमृत वेले 2 घंटे बैठो, ठीक है, फिर शाम दोपहर को बैठो और फिर कुछ शाम को बैठो, ऐसे 5 दिन लगातार आप खूब जितनी तपस्या करेंगे वो ये ऑटोमेटिकल सब ठीक हो जाएगा। दादी बहुत सचमुच दूरंदेशी थी बड़ी दादी, और दादी के जो शब्द होते थे ना वो सिद्ध होने वाले होते थे, तो जैसे वो दादी के आज्ञा अनुसार जैसे बाबा के कमरे में जाती रही 5 दिन, उसके बाद चौथे दिन ही दादी के पास आ गई। वो दादी को कहा, दादी ये तो मैं ढूंढ रही हूँ, कोई दाग ही नहीं दिखाई पड़ता, दाग ही सारे गायब हो गए। वो कहाँ गए दाग? तो ये दादी को उसने बोला कि दादी ये वास्तव में आपने कहा डायरेक्शन नहीं था, ये शिव बाबा ने आपके द्वारा मुझे डायरेक्शन दिया। तो दादी ने कहा, ये तो भाई करते ही सारा बाबा, ये मैं थोड़ी करती हूँ, मुझे बाबा ने जैसे इशारा किया मैंने आपको बोल दिया और आपका ठीक हो गया। बाबा को शुक्रिया करो, बाबा का थैंक्स दो बाबा को। तो इसलिए बाबा करण करावण हार है, बाबा सब कुछ एकदम सब समस्याओं को एकदम ऐसा साफ कर देता है, समस्याएं खत्म हो जाती हैं, कि व्यक्ति स्वयं अगर सच्चे दिल से प्यार से बाबा को अच्छी तरह से याद करे दिल से, तो वो समस्याएं ऑटोमेटिकली भाग जाती हैं। दूसरी बात, हमने देखा कि दादी के अंदर वो यज्ञ के प्रति प्यार था, यज्ञ के प्रति बहुत, यानी कि कुट कुट के दादी के अंदर, यदि एक जरा भी कोई नुकसान दादी होने नहीं देती थी यज्ञ के अंदर। एक बार क्या हुआ कि मधुबन में किचन में गई तो वहां पर पुराना भंडारा था, पुराना भंडारा जहां बिस्तर विभाग है ना अभी, वहां तो वहां एक ऐसी जगह पर गई तो दादी अंधेरे में लाइट थोड़ी थोड़ी जल रही थी, ज्यादा लाइट नहीं थी, थोड़ी लाइट जल रही थी। दादी ने ऐसी बोरी को हाथ लगाया जो बोरी के चावल जो थे ना कीड़े लगे हुए थे, उसी को दादी ने कहा कि सेवादारी को बोला इसको खींचो बाहर, और देखा तो बाहर खींचा तो उसमें कीड़े लगे हुए थे और चावल की बोरी में। दादी जिसको भी हाथ लगाती थी ना, उसमें कुछ न कुछ नुकसान ही होता था, दिखाई पड़ता था। तो दादी के अंदर ऐसी परख शक्ति थी, और देखा तो उसको बाहर निकाला, बोली दादी को कहा देखो दादी, ये बोली दादी ये देखो सारा चावल तो सारे खराब हो रहे हैं। तो दादी बोली दादी भी हैरान हो जाती थी, फिर उसको बाहर धूप में डाला। तो ऐसे ऐसे दादी के अंदर वो परख शक्ति थी। दादी ने, मैं कहता हूँ दादी इतनी फराक दिल थी। एक बार क्या हुआ कि मधुबन में जब ओम शांति भवन में मुरली सुना रही थी, तो मुरली सुनाते सुनाते एक लाइन दादी पढ़ती थी, दूसरी लाइन बिना देखे दादी पढ़ लेती थी। तो मुरली के बाद एक दिन मैंने, दादी आंगन में थी, तो मैंने दादी को कहा दादी आप मुरली कितनी बार पढ़ते हैं सारा दिन में? तो दादी ने कहा 6-7 बार पढ़ लेती हूँ। तो मैंने कहा दादी आप एक मुरली देख करके, एक लाइन देख करके पढ़ती हो और दूसरी लाइन बिना देखे आप एक्यूरेट, जरा भी मिस्टेक नहीं होती है, कमाल है आपकी दादी। दादी कहती मेरी नहीं, उसकी कमाल है, वो बाबा ही, बस बाबा को सब सदा बाबा को आगे रखती थी। यानी कि दादी के अंदर इतनी प्रैक्टिस थी मुरली सुनाने की, ऐसी कोई दादी आज तक मैंने नहीं देखी कि दादी जो मुरली सुनाती थी, दादी सब सभा में देखते हुए भी देख लेती थी, कौन नींद भी कर रहा है उसको भी प्रश्न पूछ लेती थी, और दादी एक्यूरेट, एक एक शब्द भी जरा भी मिस्टेक नहीं होता था पढ़ने में, एक लाइन देखे पढ़ना, दूसरी लाइन बिना देखे ही पढ़ लेना, और वो एक्यूरेट, ये बाबा की कमाल थी। तो बाबा के, यानी क्या कहेंगे कि दादी जब मुरली पढ़ती थी उसमें कोई शिक्षाओं की बात आती थी, तो संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये मधुबन एक किला है, शक्तिशाली किला है, इस किले के अंदर एक मत होके सबको चलना है, दो मत नहीं, एक मत होके जितना आप चलेंगे उतना आपके अंदर पावर आएगी, एनर्जी जमा होगी, और आप अनेक आत्माओं को अपने शब्दों के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपने भाव स्वभाव के द्वारा दूसरों को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इसलिए आप के अंदर वो शक्ति आनी चाहिए संगठन की, जो आपके व्यवहार से दूसरा ऑटोमेटिकली आपके पास खींचा चला आए, ना कि ऐसे नहीं कि किसी के अंदर ये नफरत है, किसी के लिए यानी वो है अपना स्वार्थ की भावना है, ना, सबके लिए अगर सामान्य दृष्टिकोण हमारा सबके प्रति होगा तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति खींचा चलाता है। तो इसलिए हमारा ये बाबा दादी के द्वारा, ये जो बाबा सिखाता था दादी के द्वारा बाबा, और मैं देखता था कि दादी जब चलती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे लाइट का फ्रिक्शन सकार बाबा चल रहे हैं जैसे, ऐसे चलती थी दादी। दादी के या दीदी के नेत्रों में ऐसा लगता था जैसे दादी के नेत्र योग में डूबे हुए हैं, ऐसे दादी से हमको फीलिंग आती थी। और दादी जब भी कोई भी डायरेक्शन मधुबन में कोई देना होता था तो दादी कोई संगठन में दिया करती थी। मान लीजिए कोई यज्ञ में कोई हलचल हो रही है, माना आपस में संगठन में थोड़ी ऊपर नीचे हो रहा है, और फिर दादी क्या करती थी, सभा को पूरा मधुबन वालों को बुलाती थी, बुला करके सबको शिक्षा देती थी। और ऐसी शिक्षा दादी देती थी कि कोई मजाला कोई बार में कोई उस दादी की कोई ऐसी कोई बात ऐसी क्रिटिसाइज करे या कुछ ऐसा नहीं, इतनी प्यार से भावना से दादी की बातें सुनते थे मधुबनवासी कि उस पर पूरा चलते थे। हमको याद है ये जो ऊपर की जो है ना ओम शांति भवन की जो कैंची डाली है, कैंची ऊपर की डाली है, जो गार्डर डाले हैं, और वो संभाले नहीं जाते थे, 50-50 भाई एक तरफ लगते थे उठाने थाने में, एक कैंची को उठा के दूसरी तरफ खींच के रखना इतना आसान काम नहीं था, उसको फिर ऊपर उठा के लगाना दीवारों के ऊपर खड़ा करना ये कोई इतना आसान काम नहीं था। और ये बाबा की कमाल थी और दादी के अंदर ये कला थी जो दादी करवा लेती थी अपने पांच बहुओं को बोल करके। और दादी ने यज्ञ को कैसे संभाला हमने अपनी आंखों से देखा कि यज्ञ को कैसे मतलब प्यार भी देना है यज्ञ निवासियों को, और यज्ञ निवासियों से सहयोग भी लेना है, और पालना भी इतनी ऊंची होती थी कि पालना कभी भी मैं कहता हूँ। एक बार दादी अपने भोजन पर बैठी थी और भोजन पर मुन्नी बहन ने तरबूज काट करके प्लेट में रखा, प्लेट पर काट कर रखा था, दादी के सामने कौन नजर आ गए, दादी के आंखों में सारे मधुबनवासी सब सामने आ गए कि दादी कहती है मुन्नी जब तक आप फोन नहीं करोगी कि भाई वैरा वाले पे एक ट्रक मधुबनवासियों के लिए एक आना चाहिए तब तक मैं नहीं उठाऊंगी, माना मैं स्वीकार नहीं करूंगा तरबूज, मेरे अंदर नहीं जाता तरबूज जब तक मधुबनवासियों को नहीं मिले। तो इसलिए मधुबनवासियों को पहले मेरे सामने अभी फोन करो और फिर उनको बोलो कि हाँ ये तरबूज जल्दी आना चाहिए, और फिर वो तरबूज स्वीकार करती थी। कहती मैं अकेली तरबूज खाऊं और मधुबनवासियों को कुछ मिले ना, पहला पहला फल आता था मधुबन में, आम का फल आता था पहले मधुबन वालों के लिए ट्रक आता था, फिर दादी स्वीकार करती थी। तो ये भी तो वो दादी की अंदर क्या ममता भाई माँ थी वो तो दादी के अंदर इतना प्यार था मधुबन वासियों के लिए यज्ञ के लिए, बाबा से सारी बाबा के से तो सारी ट्रेनिंग ली हुई से बाबा की बात में सुनाता हूँ। बाबा के सामने एक भाई ने मुझे बड़ी अच्छी बात सुनाई कि ये उसका नाम था राम भाई नाम था, किचन में था पुराने किचन में देसी घी के लड्डू बने, जब साकार बाबा के समय देसी घी के लड्डू बने और वो मधुबनवासियों के लिए, उन दिनों में थोड़े मजदूर होते थे यज्ञ छोटा था, मैं जब आया था मधुबनवासी कितने थे 25 मधुबनवासी 25 है, आप तो 1000 से ऊपर 1200 हो गया, और उस समय थोड़े थे तो लड्डू बनाए, तो उस समय क्या हुआ कि जो लड्डू बांटने थे ना मधुबनवासियों को तो बांटने से पहले ही अचानक साकार बाबा के सामने एक मिस्त्री आ गया, उसके बाद दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा आ गया मजदूर आ गया। तो बाबा का तो भाई फराग दिल था, बाबा तो बेहद मेरे तेरे बाबा तो बाबा ने कहा लाओ बच्ची, लच्छू को बोला लाओ बच्ची तो जो अभी राम ने जो लड्डू बनाए ना वो ले आओ इधर वो लड्डू जो थे ना बनाए थे मधुबनवासियों के थे। तो लच्छू ने कहा नहीं बाबा वो तो मधुबनवा नहीं नहीं बाबा और बनाए के देगा कोई बात नहीं लेके आओ। बाबा कितना फराग दिल था, बाबा ने कहा दे मेरे बच्चों को सबको खिलाओ। बाबा ने एक एक लड्डू अपने हस्तों से मजदूरों को बांट दिया और बाबा ने दूसरा ऑर्डर दे दिया देसी घी के लड्डू दोबारा मधुबन वाले के लिए दूसरे बनाओ। क्या बाबा की फराग दिली, इतना बाबा सागर था। एक मैं बताता हूँ छोटा उदाहरण के, एक भाई सत्यनारायण जो जगदीश भाई के ऑफिस में कमला नगर में सेवा करता था जो कि शांति वन में भी काफी समय रहा, उसने बहुत बड़े प्यार से अनुभव सुनाया। कहता बाबा ने भाई जब मैं बाबा के पास आया मधुबन में और सहकार बाबा ने कहा जाओ बच्चे बाबा के लिए बाजार से टिंडे लेके आओ, टिंडे लेने के आओ। वो टिंडे लेने गया बाजार से, तो क्या हुआ कि सब्जी मंडी में दो गाय होती है ना, वो आपस में दोनों लड़ रही थी। तो दुकानदार ने क्या किया कि उसकी थैली में एक पक्का हुआ टिंडा इतना मोटा उसकी थैली में तोल के डाल दिया। उसका ध्यान नहीं गया उस कि ये क्या गड़बड़ कर रहा है दुकानदार। वो गायों को देखने में बिजी हो गया, गायें आपस में लड़ रही हैं। तो क्या हुआ कि उस समय जब उसने कहा कि भाई ये लो आपके टिंडे तोल दिए, 2 किलो टिंडे, उसमें एक पक्का हुआ टिंडा उसने डाल दिया, उसे पता ही नहीं पड़ा। जब वो यहां लेके आया गेट के अंदर, उस समय तो गेट तो दूसरा था ना, लकड़ी का गेट होता था, तो यहां से आया तो बाबा इसे टहलता टहलता सामने आ गए बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे बाबा के लिए टिंडे ले आए? जी बाबा मैं ले आया। अच्छा, तो बाद में बाबा ने कहा अच्छा चलो किचन में चलो। वहां किचन में गए बाबा, तो बाबा तो पहले ही उनसे पहले ही पहुंच गए किचन में बैठ के। और जब टिंडे कहा बच्चे लाओ थैला, बाबा ने खुद अपने हाथ से थैला पकड़ा और सीधा वही अंदर से हाथ डाला तो पक्का हुआ टिंडा। बाबा ने कहा बच्चे ये टिंडा, ये पक्का हुआ टिंडा लाए हो तो ये बाबा को पक्का हुआ टिंडा खिलाएंगे आप? तो हैरान हो गया। तो बाद में अच्छा बच्चे आपका उस समय ध्यान कहाँ था, आप कहाँ देख रहे थे उस समय आप जब वो तोल रहा था? तो शर्मिंदा हो गया, कहता बाबा मैं उस समय दो गायें लड़ रही थी तो मैं उनको देखने में बिजी हो गया। तो कहा नहीं बच्चे, जब आप ना कोई भी सामान खरीदने जाओ तो देखो आप ने जब उनको आपने देखा गायों को लड़ते हुए, उसने आपका फायदा ले लिया नजायज फायदा कि उसने पक्का वोटी नादा डाल दिया। तो आगे के लिए जब जाओ बाजार में और बिल्कुल एकदम अलर्ट होके एकाग्रचित होके सामान खरीदो आप, ये बाबा ने शिक्षा दिया। तो देखो बाबा एकानामी भी और एकाग्रता भी बाबा सिखाते थे, और बाबा ये भी सिखाते थे कि यज्ञ के अंदर कितना अलर्ट होके रहना, नुकसान यज्ञ में कोई भी पाई भी वगैरह वो सब एकदम वो होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बाबा के घर में। एक बार दादी ने मेरे को कहा जाओ बाबा भावाराम मधुबन के जो है ना उसमें 83 की बात थी, 83 या 84 की बात थी, कहा कि जाओ ये अंगूर है ना मधुबन के, इस पंजाब हरियाणा हिमाचल वहां आप बांट के आओ। तो मेरे को नाग कितने थे, नाग 11 नाग थे वो अंगूरों के, 2 नाग मेरे थे अपना अटैची और बैग, तो 13 नाग मैं अकेला गया पूरे पंजाब मेन जो सेंटर थे वहां सब बांट के आया। तो मैंने देखा भी अंगूर तो कहीं खराब नहीं हो गए हो, रास्ते में कहीं चीटियां ना लगी। अचानक मैं लुधियाने गया, खोला तो उसमें चीटियां लगी हुई अंगूरों को। मैंने कहा ये चीटियां कहाँ से आ गई ये भाई? तो उन्होंने भाई ने खोल के दिया, देख भाई इसमें चीटियां आ गई भाई, चीटियां तो यही लुधियाने की चीटियां, हमारी चीटियां कोई माउंट आबू से थोड़ी मैं ले गया हूँ, ये यहीं से खड़ी है चीटियां, इसको निकालो सारा साफ सफाई करो, उसके बाद वो दूसरे सेंटर पर जाके बांट रही है, इसको सब निकालो। फिर सारे बेचारे ने मेहनत किया सारा साफ सुथरा किया, उसके बाद फिर मैं पठानकोट गया अंगूर लेके। वहां पर मैंने स्टूडेंट देखा, हैरान हो गए, स्टूडेंट ज्यादा थे, अंगूर मुझे कम दिखाई पड़ रहे थे। तो मैंने कहा दादी, गोपी दादी थी, मैं दादी आपको अंगूर कम नहीं पड़ेंगे? अरे भावा राम एक एक अंगूर को मैं चाकू से 4-4 भाग करूंगी, एक अंगूर को 4-4 भाग चाकू से करूंगी, मैं सबके मुख में डालूंगी। ये साकार बाबा के हस्तों का ये पेड़ है, अंगूर है, वो कोई साधारण अंगूर नहीं है, इसलिए मैं सबको खिलाऊंगी। ये ठीक है दादी, फिर वो भी पूरे पड़ के एक एक काट काट के नहीं दिया, सबको एक एक आ गया था। तो इसलिए देखो दादी भी कितना प्यार से कैसे मधुबन के अंगूर भेजती थी। मैं कहता हूँ कि दादी के अंदर हृदय के अंदर इतना प्यार था, वो छलकता था परिवार के लिए, यानी कि जो साकार बाबा से बाबा दादी ने जो पालना ली हुई थी ना वो प्रैक्टिकल, जैसे दादी जैसी थी जैसे कि सैकड़ ब्रह्मा, तो ऐसी दादी पालना करती थी दादी, तो कमाल की थी दादी। तो मैं कहता हूँ एक बार दादी ने कहा कि अपने कुछ भाई भी ऐसे थे यहाँ पर, जो पहली बार एक भाई है ना अपना यहाँ यज्ञ में रहता अभी भी है, वो कहीं गया वहां पर जामन खाने, तो जामुन खाने गया तो वहां पर पेड़ से खाते खाते नीचे गिर गया, पेड़ से खाते खाते जामुन खाते खाते गिर गया। उन दिनों में क्या होता था, एक कहीं 81 की बात अशात, तो उस समय क्या हुआ थे? वो गिर गया तो उसके बाद मालूम पड़ा कि ये गिर गया तो दादा नारकमार होता था मधुबन में, वो रोजी वैन है ना अपना चिनाई की, रोजी वैन का पिताजी उसका था नाम था दादा नारकमार। तो वो थे, उनका स्कूटर होता था, एक डबल स्कूटर जो डबल सवारी का होता था। उस दादी ने कहा कि ये उन दिन में एक भी गाड़ी मधुबन में नहीं थी, एक भी कार नहीं थी, उनको वहां से पहाड़ी में से गिर गया है, पेड़ से नीचे गिर गया, तो उसको कैसे लाना है, उसके लिए तो साधन चाहिए ना लाने के लिए। फिर स्कूटर पर दादी जी कहा जाओ स्कूटर ले जाओ डबल, और वो जज पर स्कूटर लेके गया, वहां उसको भाई को लेके आया, लेके आया तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी उस समय तो माउंट आबू में तो अपना हॉस्पिटल नहीं था, तो उनको फिर कहा हॉस्पिटल में वहां ले गए बाजार में। फिर दादी ने मधुबन वासियों की क्लास में बोला कि कोई भी मधुबन वासी कोई भी जामुन के पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, कोई जाएगा नहीं जंगल में जामुन खाने के लिए, जामुन आपको चाहिए ना दादी खिलाएगी आपको। गोपाल भाई को बोला गोपाल भाई जाओ बाजार में जितने भी बेचते हैं ना जामुन वो सारे खरीद कर ले आओ मधुबन में, वो दो टोकरे भर के यहाँ ले आया, ला करके सबको खिलाए और कहा खाओ सभी मधुबन वाले, कोई भी मना जंगल में नहीं जाएगा जामुन काटे। उसका रिजल्ट देख लिया कि उसने टांग तोड़ लिया अपनी, फ्रैक्चर होगी है ना। तो दादी कितना ध्यान रखती थी कि देखो किसी की बुद्धि बाजार में नहीं जावे, किसी की बुद्धि कहीं जंगल में नहीं जावे कि ये खाऊं नहीं, आइसक्रीम की तरफ किसी की बुद्धि जाती है। तो दादी ने नई नई मशीन मंगवाई थी, उसमें वल्लभ भाई होता था वो हाथ वाली चलाने वाली, नमक डाल करके बीच में ऐसे चलाते थे वो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन हाथ वाली, वो यहाँ नई नई लाए थे, वो भी इसीलिए था कि किसी की बुद्धि नहीं जाए कि बाजार से हम जाके आइसक्रीम खावे। तो दादी कितना ध्यान रखती थी, पालना देती थी कि कोई भी बाजार से कोई चीज लेके खानी नहीं है। तो इतना दादी का मधुबन वासियों के लिए पूरे परिवार के लिए बड़ा ध्यान रहता था। मैं कहता हूँ कि आप लकी हो, आप महान हो, आप जैसा खुश नसीब संसार में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसे बाबा को पहचाना है दिल से, और जिन आत्माओं ने बाबा को पहचान लिया है और ये पहचान आपकी कल्ब कल्ब आपकी पहचान रहेगी। अभी से आप बाबा की बातों का जितना ध्यान रखोगे उतना ही आप, यानी कि द्वापर से लेकर के आपके जो भी मंदिर होंगे या भक्ति करोगे आप, तो आपकी पूरी भक्त लोग भी आपका पूरा ध्यान देंगे, पूरा आपकी पूजन करेंगे आपका। यानी कि देखो यानी ब्राह्मण परिवार में भी अगर कईयों की बहुत अच्छी जीवन मैंने देखी है, और कई लोग ऐसे हैं ब्राह्मण में जो साधारण जो होते हुए ना वो प्यासी नजरों से दूसरों को देखते हैं। मैं कहता हूँ हमारी आंख किसी दूसरे की तरफ नहीं डूबनी चाहिए, अगर हमारी दूसरे की तरफ डूबती है इसका मतलब हम संपन्न नहीं बने हैं अभी तक। अभी भी हम सब कुछ होते हुए भी अगर हमारी आंख दूसरी तरफ जाती है और फिर ये मन में आता है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, मैं कहता हूँ बाबा ने क्या नहीं दिया हमको, सब कुछ दिया है, लेकिन कभी किस चीज की है, जो बाबा कहता है कि बच्चे सम्मान की कमी है, अगर सम्मान में रहोगे तो आप संपन्नता का अनुभव करोगे, ठीक है ना। अलग अलग डिग्री ब्राह्मणों की होती है। मान लीजिए कि एक बार दादी ने बाबा ने सकार बाबा ने एक बार कहा था सृष्टि हाल में, मेरे किसी भाई ने मुझे सुनाया, बहुत ही अच्छी बात सुनाई बाबा ने, कहा देखो डिग्री अलग अलग ब्राह्मणों की होती है, शिव बाबा 100% प्योर है, 100% संपूर्ण है, और ब्रह्मा बाबा 99 और मम्मा 98 है ना। तो ऐसे दादियां ऐसे ही, तो ऐसी सबकी डिग्री अपनी अपनी होती है, और ये बच्चे द्वापर से जब ये गिरना शुरू होता है तो जो आत्माएं कम डिग्री वाली होती हैं वो जल्दी जल्दी पाप पुण्य के अनुसार वो नीचे उतरती जाती हैं। वो ऐसे ही जैसे मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप दूध ले लीजिए, आप दूध गिलास में एक बर्तन में डालिए 1 लीटर, दूसरे में डालिए 10 लीटर और तीसरे में 50 लीटर दूध डाल लीजिए, है ना। तो है तो 50 लीटर वाला भी संपूर्ण है ना, और 10 लीटर वाला भी पूरा ही भरा हुआ है, हम यही कहेंगे ना, तो एक लीटर वाला भी भरा हुआ है, ठीक है ना, है सभी भरे हुए हैं, लेकिन डिग्री सबकी एक एक नहीं होती है, डिग्री सबकी नंबरवार होती है। ऐसे ही जब द्वापर से जब नीचे उतरते हैं तो हमारी पुण्य और पाप के अनुसार जिसी जैसी हमारी कम डिग्री वाली आत्माएं होती है जल्दी नीचे उतर जाती है, वो जो ज्यादा पावरफुल वाली डिग्री होती है जिनकी, वो धीरे धीरे आराम से नीचे आती है। तो इसलिए संगम योग में भी जितना जितना हमने शिव बाबा को अच्छी तरह से अंदर से जिगर से पहचाना है, उसी अनुसार हमारी मुस्कुराहट अंदर की और बाहर की होती है। मुस्कुराहट भी कईयों की डुप्लीकेट होती है, स्माइलिंग डुप्लीकेट होती है, ओरिजिनल नहीं होती है। और जब व्यक्ति ओरिजिनल मुस्कुराता है ना, उसके अंदर से हाव भाव उसकी ओरा ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन कैच कर लेता व्यक्ति कि ये रियल अंदर से सचमुच अंदर बार सच है, और उसकी ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन खींचती है, सबको प्यार उसको मिलता है। जिसका दिल अंदर से साफ सुथरा है, बिल्कुल सत्य है और प्योरिटी में नंबर अच्छा है उसका आगे, और वो व्यक्ति सबको कशिश करता है, उसको सबका ब्राह्मणों का प्यार मिलता है। जब ब्राह्मणों का सबका प्यार मिलता है तो अंडरस्टूड है कि वो आत्मा जो है ना जल्दी से जल्दी उसकी आगे समस्या ठहर नहीं सकती है। क्यों नहीं ठहर सकती है? क्योंकि वो आत्मा संपन्न है, वो आत्मा के अंदर सत्यता से भरपूर भरपूर है, वो ऐसा अनुभव करती है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों के लिए हम थोड़ा ठहर जाते हैं ना, समस्याएं जब आती हैं, वो आती हैं तो समस्याओं को भगाने की कोशिश करते हैं। तो भगाना किसको चाहिए, भगाना किसको चाहिए बताओ? समस्याओं को भगाने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए हमको? पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि हमें बिल्कुल सम्मान में रह करके जितना आप देह से न्यारा होकर सत्य स्वरूप में टिक जाएंगे ना, तो समस्या ऑटोमेटिकली भाग जाएगी। हम समस्या को पहले भगाते हैं और यहाँ पर हम सम्मान में उसको एक साइड में कर देते हैं। मुझे याद है एक बार 15 साल पहले यहाँ अचल दीदी यहाँ आई थी, सुखनाम में ठहरी थी, उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा था, कहा बाबा राम तू बहुत देख रही हूँ मैं, बहुत लंबे समय से आप मधुबन में हो, तेरी आज तक कोई रिपोर्ट हमने नहीं सुनी है। तो मैंने कहा दीदी ऐसे है, मधुबन में रहने के लिए, इस बड़े संगठन में रहने के लिए हमने दो बातों का ध्यान रखा हुआ है। कहती क्या? मैं कह जितना बड़ा संगठन होता है ना उतनी बड़ी दिल रखनी पड़ती है यहाँ पर। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं पहले हम यानी कि सेवा को आगे महत्व देते हैं तो सेवा वाले व्यक्ति जो है ना वो फेल हो जाता है, सेवा को हम आगे रखते हैं तो स्व की स्थिति डाउन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले अपनी स्थिति जिसके लिए यहाँ हम आए हैं, हम अपनी स्थिति बनाने के लिए यहाँ आए हैं, और स्थिति अगर हमारी पावरफुल है, अच्छा उस पर अटेंशन रहता है, तो सेवा ऑटोमेटिकली निर्विघ्न चलती है। अगर हम पहले सेवा को महत्व देते हैं और अपनी महत्व उसको देते नहीं है सम्मान को, इसलिए बार बार बाबा को भी कहना पड़ता है भी सम्मान में जितना हो सके रहो, सम्मान में जितना हो सके रहो। बाबा 6-8 साल से बाबा हमेशा एक ही पॉइंट पर बाबा जोर देते आ रहे हैं कि बच्चे जितना हो सके खुश रहो, जितना हो सके खुश रहो। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि आगे आने वाला जो समय है ना वो बहुत नाजुक आने वाला है, तो नाजुक समय में बच्चे खुश नहीं रहेंगे, तो बच्चों को खुशी कैसे बढ़ाए उसके लिए बाबा बार बार पॉइंट भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा खुशी पर बाबा ये जोर देते आ रहे हैं कि बच्चे खुश रहो, खुश रहो। किसी की बात को आपको पसंद नहीं आती, किसी का व्यवहार नहीं पसंद आता है, तो उसको आप निकलेट नहीं कर दो, आपके भी आप इसका मुझे व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसके कारण अपना उसके लिए माना संपर्क की कनेक्शन कट कर देवे, नहीं। जितनी मेरे से वाइब्रेशन अच्छा दातापन की भावना से वाइब्रेशन फैलाते जाएंगे उतना ही सबको सुख मिलता जाएगा। अधिक से अधिक 4 दिन पहले बाबा ने मुरली ने कहा सबका भला करो, सबका भला हो, सबके लिए कल्याण की भावना रखो। जितना आप कल्याण की भावना रखेंगे तो आपका कल्याण हुआ ही पड़ा है, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जब सबके लिए आपका दृष्टिकोण ऊंचा है तो ऑटोमेटिकली आपका कल्याण है ही है। तो हम अपने कल्याण के लिए ज्यादा सोचेंगे तो दूसरे के लिए कल्याण के लिए तो फिर हम समय अलग निकालने में टाइम लगाएंगे ना, तो इसलिए अपनी वाइब्रेशन सबके प्रति क्या निकलनी चाहिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, सब संतुष्ट रहें, सब खुशियों से भरपूर रहें, ये भावना अंदर से निकलनी चाहिए। जब ये हम स्वार्थ भावना अंदर होगी ना, तो उसके चेहरे में मायूसी रहेगी, उसके चेहरे पर खुशी गायब हो जाएगी, और ये खुशी जब गायब होगी तो बाकी विराय क्या क्या। फिर इस ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर खुशी नहीं है, निश्चिंत नहीं है, तो निश्चिंत नहीं है तो फिर मजा नहीं आता इस ब्राह्मण जीवन जीने में। इसलिए निश्चिंत रहना, हल्का रहना, बेफिक्र बादशाह बन के रहना, और फिर उसके लिए तो बहुत बड़ी ऊंची स्थिति क्या चाहिए कि अधिक से अधिक बार बार अपने आप को समझाते रहें।